તારીખ 20/8/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 331 અને 332 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 457
પત્રાંક 331 વિતરાગપણે અત્યંત વિનયપણે પ્રણામ પત્ર કોના ઉપર છે નથી મળતું કોઈ પોસ્ટ કાર્ડ છે કોઈ વાર લલ્લુજી મુનિને પણ પ્રણામ લખે છે એટલે કાગળમાં પ્રણામ લખવાની પદ્ધતિ હોય એને પણ પ્રણામ લખે છે પોસ્ટકાર્ડમાં તો એવું છે કે સરનામા ઉપરથી કોને લખાણું છે ખ્યાલ આવી જાય હવે ગમે તે કારણસર સંપાદકોએ લખ્યું નથી ખાલી છે ને પાછું જોઈ લીધે આપણે તો વિષય જે છે એ ઉપયોગી છે માર્ગદર્શન છે ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે એવા આ સંસારી પ્રસંગ અને એવા આ પ્રકારો તેમાં જ્યાં સુધી જીવને વાલપ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવને પોતાનું સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત છે અને સત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ તથારૂપણે ભાસવું અસંભવિત છે ક્યાં પૂર્ણ વિરામ ત્યાં લીધું છે શું કહે છે કે સંસારના કોઈ પણ પ્રસંગ અને કોઈ પણ પ્રકાશ એ સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે સુખ ઉસમે લગતા હૈ ભાષણ મેં લગના કોઈ ભી પ્રસંગ મેં પર કોઈ ભી પ્રકાર મેં પદાર્થ કે કોઈ પર કોઈ પણ પ્રકાર કે પર્યાય હો સંસારિક પદાર્થ કે ભૌતિક પદાર્થ કે ઉસમે સુખ લગતા હૈ વો બ્રજીવ કી ભ્રાંતિ હૈ કે સુખ તો પાસ હૈ નહીં ફિર ક્યો લગતા હૈ જો લગતા હૈ વો જીવ કી ભ્રાંતિ હૈ ઓર વહાં અચ્છા લગતા હૈ વાલબ મેને મીઠાસ રસ આતા હૈ ભ્રાંતિ સે ઉસમે રસ આતા હૈ ભ્રાંતિ કે કારણ સે રસ આતા હૈ ભ્રાંતિ મેને કલ્પના કર રખી હૈ વાસ્તવ મેં તો દુઃખ હૈ ઉસ પરિણામ મેં વાસ્તવ મેં તો દુઃખ હૈ લેકિન ભ્રાંતિ સે સુખ ભી લગતા હૈ ઓર મીઠાસ ભી અચ્છા ભી લગતા હૈ રસ ભી આતા હૈ વાલફ હૈ ગુજરાતી ખાસ શબ્દ હૈ વાલું લાગે છે સારું લાગે છે वहां तक जीव को अपना स्वरूप भाषित होना असंभवित है अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप है सुखरूप है अनंत सुख की खान है वो भाष्यमान होगा अनेक दिल्ली वाला गया लगे से दिल्ली वाले थे वहां तक जीव को अपना स्वरूप भाषित होना असंभवित है संभवित नहीं है नहीं भाषेगा चैतन्य मेरा स्वरूप सुख सुख रूप है ऐसा अंदर में लगेगा नहीं दो जगह ये सुख नहीं लग सकता भ्रांति भी हो और निर्भ्रांत दशा भी हो वो बात कैसे बनती वो बात दो बनती बन सकती नहीं है उतना तो ठीक है, क्योंकि स्वरूप भाषित होना वो तो एक स्वरूप निश्चय का स्टेज है, पर वो मुमुक्षु की भूमिका में, उत्तम कोटि की भूमिका में आता है तब उसको स्वरूप भाष्यमान होता है। पर स्वरूप भाष्यमान हुए वो तो सम्यक दर्शन का एक अंग है, कारण निमित्त दोनों नहीं कहते, उसको अंग बोलते हैं। उसको तो सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा, ये बहुत अल्प समय में हो जाएगा, बहुत अल्प समय में हो जाएगा। तो स्वरूप तो नहीं भासेगा, परंतु सत्संग का महात्म भी तथा रूपणे मैंने जितना भाषित होना चाहिए उतना भाष्यमान होना असंभवित है। सत्संग है वो स्वरूप भाव भाषण का निमित्त कारण है, तो स्वरूप का तो भाव भाषण नहीं होगा, सत्संग का भी मूल्य उसको नहीं आएगा। सत्संग के जो मूल्यांकन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो दूसरा प्रसंग को मुख्य करेगा, सत्संग को गौण करेगा, क्योंकि उसको मूल्य नहीं है। सत्संग इस काल में कितना दुर्लभ है इसका मूल्य नहीं है, उसका पता ही नहीं है कि कितना दुर्लभ है। अब नजर लगाओ तो कहाँ सत्संग मिलता है देख लीजिए, अंगुली के वैसे बेड़ा में गणे उतनी बात उतनी जगह मिलेगा। गुरुदेव ने इतनी स्वाध्याय की परंपरा चलाई, फिर भी हमारे बहुत से मंडल में और बहुत से मंदिर में स्वाध्याय नहीं चलता है। अहमदाबाद में 3 मंदिर है, स्वाध्याय नहीं चलता है। मुंबई में 4 मंदिर है तो एक आध में चलता है, 3 में नहीं चलता है, ये हालत है। जहाँ इतनी मुमुक्षु की संख्या है वहां स्वाध्याय नहीं चलता है, सत्संग नहीं चलता है। क्या उसमें उपयोग लगे नहीं लगे कोई भाव नहीं पूछेगा। गुरुदेव तो कभी कभी परीक्षा कर लेते थे टैप में, तो क्या है कि उपयोग लगा नहीं लगा है, वो भी टैप में बहुत संख्या नहीं होती है। जामनगर भावनगर से भी बड़ा मंडल है, स्वाध्याय नहीं होता है। जामनगर में नहीं हालत है, मंडल अपना करता है मोटो से, स्वाध्याय नहीं शू होता है। लोगों ने उपयोग रहो बहुत मुश्किल है, स्वरूप तो भाष्यमान नहीं होगा, सत्संग का मूल्य भी नहीं आएगा। वरना तो ऐसा लगे कि हमको रोज खाना चाहिए, रोज हमको पीना चाहिए, रोज आराम चाहिए, निंद्रा चाहिए, उसके बिना में नहीं चलता, आराम के बिना नहीं चलता, खाने के बिना, सत्संग के बिना चलता है, ऐसी बात है। जो जो जीव का खुराक है उसको खुराक नहीं दो तो चलता है, शरीर को खुराक चाहिए, ये हालत है। उसका भी पता नहीं है और उसका मूल्य भी नहीं आएगा, क्यों कि संसार के प्रसंग में वालप मिठास और उसके प्रकार में मिठास है, वो अच्छा लगता है। जब तक यह संसारगत वालप और संसारगत वालप को प्राप्त न हो, और संसारगत मैंने मोक्ष आत्मकल्याण, आत्मकल्याण है वो और संसारगत है, वहां रस नहीं आएगा, वहां तक खचित करके मैंने अवश्य करके अप्रमत्तपणे मैंने कहीं भी अटके बिना दूसरे दूसरे कार्य में लगे बिना, बार बार पुरुषार्थ का स्वीकार योग्य है, पुरुषार्थ करना ही चाहिए, ये संसारगत वालभ को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए। यह बात तीन काल के विषय, तीन काल में अविसंवाद जान करके, उसमें विवाद करने की जगह नहीं है, विवाद करना ही नहीं ऐसा कहते हैं। इस बारे में कहीं भी तर्क विवाद करना नहीं,
तर्क की गुंजाइश नहीं,
तर्क करने योग्य नहीं है, ऐसा जानकर हमने तो निष्काम उन्हें लिखा है। हमको कोई उसमें कामना
नहीं
है, कोई आशा अपेक्षा से नहीं लिखा है, कोई हेतु से नहीं लिखा है। कोई हमारा सत्संग करे ऐसी अपेक्षा रख करके सत्संग का प्रतिपादन नहीं करते हैं। निष्काम रूप से मतलब कि सिर्फ आप तुम्हारी भलाई के लिए लिखा है, और कोई हमको हमारा कोई कारण नहीं है, ऐसा करके लिखा है। बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है मुमुक्षु जीव को चाहिए कि उसको कहाँ कहाँ मिठास आती है, किस प्रसंग में और किस पर्याय में, अन्य पदार्थ के किस पर्याय में और अन्य पदार्थ के किस प्रसंग में, उदय के किस प्रसंग में रस आता है उसको देख लेना। अगर रस आता है तो उसको न स्वरूप का निश्चय होगा, न उसको कोई आत्मकल्याण के लिए सत्संग की महिमा आएगी, सत्संग गौण हो जाएगा। क्या सबसे बड़ी बात है कि सत्संग गौण हो जाएगा, मिल मूल्य नहीं आएगा तो सत्संग गौण हो जाएगा, संसार के कार्य मुख्य हो जाएंगे और सत्संग गौण हो जाएगा। सत्संग का अवसर छोड़ना पड़े ऐसा कोई उदय आवे तो पुरुषार्थ करने के लिए चलता है। तो पुरुषार्थ करना मतलब क्या, कि सत्संग का प्रसंग छोड़ना पड़े ऐसा कोई उदय आवे तो सत्संग का प्रसंग नहीं छोड़ करके उस उदय को कैसे हैंडल करना, कैसे उसको टैकल करना, उसको कैसे अवॉइड करना या कैसे उसको एडजस्ट करना, ऐसा पुरुषार्थ चलना चाहिए, अवश्य ऐसा पुरुषार्थ चलना चाहिए, तो सत्संग का मूल्य है। वरना तो कोई भी काम तो आता ही रहेगा, उदय में तो अनेक प्रकार बनेगा, क्या करें भाई, हमारा उदय ऐसा था, हमको सत्संग छोड़ना पड़ता है, उसमें कोई उसको लगता नहीं है। एक दिन भी सत्संग छूटे तो आंख में आंसू आ जाना चाहिए, अरे एक दिन का सत्संग जाता है मेरा, हमको ये बर्दाश्त होता नहीं है, ऐसा लगना चाहिए, तभी सत्संग का मूल्य है, और तभी ये सत्संग से कुछ न कुछ लाभ होने वाला है। वरना तो ठीक है, अपने पास टाइम है इसलिए सत्संग में जाता है, टाइम नहीं हो तो नहीं जाएंगे, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, ये बात रहेगी। लास्ट प्रायोरिटी में आ गया, फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी नहीं रही, लास्ट प्रायोरिटी में आएगा। ऐसा सत्संग से कभी आत्महित होता
नहीं
है। एक पुष्कर है लेकिन दो बात बहुत अच्छी लिखी है। हाँ वो प्रश्न ठीक है, उसी वक्त हमको ऐसी भ्रांति, कैसी भ्रांति हुई कि हमको मिठास आती है, ये किस प्रकार की भ्रांति चली कि जिससे हमको रस आता है, अच्छा लगता है, मिठास आती है। बस जागृत होकर के भ्रांति एक भूल है, भूल से ऐसा होता है, तो भूल को भूल तलाश करके भूल देखने में आवे तो भूल मिट जाती है। जैसे 5 2 7 होता है, पांच में दो मिलाने से होता है और हम गिनेंगे आठ, तो मेल तो नहीं खाएगा, कहाँ गलती रहेगी। देखो पांच दो सात, हाँ इधर आठ गिनते थे इसलिए एक भी भूल आती थी। बस भूल का पता चलने से भूल निकल जाती है। भ्रांति एक भूल है, वो तो भूल कैसे हुई है इसका पता चल गया तो भूल निकल गई। उतना ही देखना है कि हम कैसे कल्पना करते हैं, क्यों कल्पना हुई, किस कारण से हुई, ऐसा क्यों लगता है हमको। बस सुख है नहीं, सुख कैसे लगता है। कोई दूसरा आदमी हमको हमारी छेतरपिंडी करता है तो हमको बहुत दुख लगता है, करा ऐसा हमारी बुद्धि को ऐसा कर गया। हम तो बुद्धिमान है फिर भी आगे निकल गया हमारी बुद्धि से, पर यहाँ स्वयं खुद धोखा खा जाता है अपने आप से, तो उसका उसको कोई रंजन नहीं होता है, दुख नहीं होता है कि क्यों बार बार धोखा खाते हैं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख का अनुभव करते हैं, ये कैसी गड़बड़ है। कैसे मैंने वस्तु का स्वरूप ज्ञान अनुसार अनुभव करे तो भ्रांति नहीं होगी और सुख भी नहीं लगेगा। वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसे पुद्गल है तो पुद्गल में सुख दुख तो है नहीं, परमाणु में कहाँ सुख दुख है, फिर सुख दुख की अपेक्षा क्यों यहाँ से यहाँ रहती है, परमाणु में परमाणु के पास सुख दुख की अपेक्षा क्यों रहती है। इसलिए रहती है कि वहाँ कल्पना भ्रांति हुई है, इसलिए भ्रांति हुई है या कल्पना हुई है इसलिए। जो खाने में अच्छी चीज कोई अच्छी गिनी जाती है, अच्छी बच्ची तो ठीक है, कोई अच्छी नहीं है कोई बुरी भी नहीं है, लेकिन जो गिनी जाती है कोई मिठाई अच्छी है वो चीज अच्छी है, अच्छी है ज्यादा खाओ क्या फायदा, जीव तो खाता नहीं, ज्यादा खाने से फायदा क्या, न खाने वाले को फायदा है न खिलाने वाले को भी, क्योंकि खिलाने वाले को अनुमोदना आती है। मैंने को थोड़ा सावधानी रखनी है, ज्यादा खिलाते ना, थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा खाओ और थोड़ा ज्यादा खाओ, न खाने वाले को फायदा है न खिलाने वाले को फायदा है, क्योंकि जीव तो खाता नहीं, जीव खाता है फिर क्यों ज्यादा खिलाना, अच्छा रहेगा खाने, ज्यादा खाने से अच्छा होगा क्या, अच्छा रहता है क्या, कोई बात में दम नहीं है। एक क्षुधा नाम का रोग है जीव को, क्या शरीर को भी ये रोग है, शरीर में तो कभी तंदुरुस्ती भी गिनते में आती है कि भूख लगती है तो तंदुरुस्ती है, भूख मर गई तो कोई बीमारी है, लेकिन एक क्षुधा में भाज का भाव होना जीव को, यही जीव को रोग है, इसलिए तो पूजा में आता है क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम, नैवेद्यम क्यों अर्पित करते हैं, क्षुधा का रोग नाश करने के लिए, भगवान को कोई नैवेद्य की जरूरत नहीं है, उनका तो क्षुधा का रोग नाश हो गया है, भगवान को तो कोई क्षुधा रोग है नहीं, तो उसको खिलाना वो तो बात है नहीं, फिर भी अर्पण क्यों करते हैं, हमारा क्षुधा रोग मिट जाए इसलिए अर्पण करते हैं। जितना ज्यादा खाए इतना अच्छा, ठीक, खास करके राजस्थान में यूपी में वो ज्यादा है, खुराक अच्छा होना चाहिए, कोई इसमें समझदारी
नहीं है,
नहीं है। इसमें क्या है कि भूख धीरे धीरे एक एक रोटी ज्यादा खुराक ले वे, तो खुराक बढ़ सकती है, हाँ और क्या क्या फायदा है इससे, खुराक ज्यादा, इसका खर्चा ज्यादा, उसका पाप ज्यादा। खर्चा पूर्ति के लिए पाप किए बिना कोई अभी खर्चा पूर्ति होती है क्या? हाँ, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान है। वो सब भ्रांति है। ज्यादा खाने से खिलाने से लाभ है, वो केवल भ्रांति है, और कुछ नहीं है। देखो गुरुदेव 3-4 रोटी खाते थे पतली पतली, कोई ज्यादा खिलाने का आग्रह वहां चले ही नहीं, कायदा बन गया वो तो। कोई किसी का भी आहार दान हो, एक टुकड़ा ज्यादा लो, ऐसा बात नहीं चलेगी वहां। जो लेते हैं वो ही लेंगे। वो तो एक टैक्सी भाड़ा है, जिसमें सफर करते हैं उसका मीटर दे दिया, बात खत्म। हमारे डॉक्टर गांगुली कैसे कि ये तो टैक्सी भाड़ा है, और टैक्सी भाड़ा में उसको संघार करने की जरूरत क्या? हाँ, ये अच्छा बनाओ, वो अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, भाड़ा तो टैक्सी का है। टैक्सी वाले को नई नोट दो या पुरानी नोट दो, क्या फर्क पड़ता है? 10 की नई नोट देने से कोई 10 गिनेगा क्या?
नहीं।
नई नोट है, चार आना, ज्यादा गिन लेना, यानी पुरानी दो या नहीं दो, बस। शरीर तो वो ज्यादा लेगा भी नहीं, अगर कोई ज्यादा खिलाएगा तो गड़बड़ होकर हो जाएगी। वो भी प्रमाणिक है, मकान मालिक भी, टैक्सी का मालिक भी प्रमाणिक है, वो ज्यादा लेता नहीं है, ज्यादा दे तो वो बाहर फेंकेगा, विकृति हो करके बाहर फेंकेगा। नियमित, वो वृत्ति नियमित हो जाती है, वृत्ति संक्षेप हो जाती है। ज्यादा रस नहीं आएगा तो ज्यादा खाएगा भी नहीं, क्या ज्यादा कौन खाता है कि जो रस आता है वो? जिसने लाभ माना है, जिसको मिठास आती है, तो खाने में ज्यादा खा लेगा और खिलाएगा भी ज्यादा। बहुत अच्छी चीज है, खाओ आप, और खाओ, और खाओ, क्या फायदा? कोई फायदा? ये भ्रांति छुड़ाने के लिए दृष्टांत है, कहीं भी भ्रांति करने योग्य नहीं है। वरना स्वरूप तो भाषित नहीं होगा, सत्संग का भी मूल्य नहीं भाषित होगा, ये बात हो जाएगी, बस फिर तो कोई कल्याण होने का कोई अवसर
नहीं है।
नहीं है,
नहीं,
आग्रह तो क्या है, आपको अनुकूल हो तो और लियो, क्या आपको अनुकूल हो तो और लियो, अनुकूल नहीं हो तो देने से क्या फायदा? प्रतिकूल पड़े उससे कोई फायदा तो है नहीं, ले सकते हो तो लियो, तो वो तो एक सज्जनता का काम है, और कोई बात नहीं है उसमें। ऐसा कहना कि अभिप्राय में रखना कि न उसको खाने में उसको फायदा भी है, न खिलाने में हमको भी फायदा है, कुछ नहीं। वो पहले एक जमाना था अपने यहाँ, कभी आग्रह नहीं करे तो अगले को बुरा लगेगा। अभी डाइनिंग टेबल आ गया, फिर वो बात नहीं रही, अपने हाथ से सब ले ले, इसलिए वहां सब रख लेते हैं, अपने हाथ से ले ले, जिसको जितना अनुकूल पड़े उतना ले ले, बात खत्म। अम्बालाल भाई का पत्र है। आरंभ और परिग्रह का जैसे जैसे मोह मिटता है, जैसे जैसे उसके प्रति अपनापन का अभिमान मंद परिणाम को प्राप्त होता है, वैसे वैसे मुमुक्षुता वर्धमान हुआ करती है। मुमुक्षुता कहो या पात्रता कहो, एक ही बात है। पात्रता कैसे बढ़े, कैसे वर्धमान हो, इस प्रश्न का ये उत्तर है कि आरंभ और परिग्रह का जैसे जैसे मोह मिटे। क्या परिग्रह बढ़ाने के लिए आरंभ करना पड़ता है, या परिग्रह या कोई भी संयोग पूर्व कर्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो उसमें अपनापन का मोह हो, अपनत्व का मोह, ये मेरा है तो ये अपनापने का अभिमान है और कुछ नहीं है। अभिमान इसलिए कहते हैं कि जीव का जहां अस्तित्व नहीं है वहां अहम बुद्धि करना, अपनापन करना, ये अभिमान है और कुछ नहीं है। जैसे मैं मकान वाला, पैसा वाला, शरीर वाला, अरे बुद्धि वाला, क्या
बुद्धि वाला,
एक समय के पर्याय में भी त्रिकाली अस्तित्व नहीं है, उघाड़ में अहम भाव करता है। कहीं भी त्रिकाली को छोड़ करके अहम भाव करने योग्य कोई स्थान, कोई द्रव्य, कोई भाव नहीं है। तो उस प्रकार से मुमुक्षुता वर्धमान होती है, मुमुक्षुता का विकास होता है, और जितना अपनत्व करे उतनी मुमुक्षुता हानि को प्राप्त होगी। अपनत्व छोड़ना है संयोग में, अपनत्व छोड़ना है वो आरंभ परिग्रह का विषय लिया है कि संयोग में अपनापन करना नहीं है। आरंभ परिग्रह से लेकर के कोई भी संयोग लेना, शरीर आदि संयोग भी ले लेना, परिवार का संयोग भी ले लेना, और चीज वस्तु का भी जो प्राप्त हो वो परिग्रह, उसके पर जो अपनापन है वो भी परिग्रह है, और वो परिग्रह बढ़ाने के लिए जो भी करना वो आरंभ है वो भी छोड़ देना, बढ़ाने के लिए छोड़ देना। एक प्राथमिक आवश्यकता हो, चिंता नहीं करनी पड़े, उतना पूर्ता वो काम करना है, अपना भाव गिर नहीं जावे, इसलिए इससे ज्यादा करना नहीं चाहिए। लोग तर्क उठाते हैं वो ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं किया हो और कोई बड़ी बीमारी आ गई, उस वक्त पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करेंगे, ठीक, इसलिए पहले से थोड़ा पैसा रख लेना अच्छा है। कृपालु देव ने ये जो भावना बोध लिखी इसमें एक पाठ अच्छा लिखा है, सनत कुमार चक्रवर्ती वो दीक्षा लेते हैं तो उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा तेरा राजकुमार का भाव है, बहुत कोमल शरीर है, अब जो जंगल जाएगा, कभी बीमार हो गया तो वहां तेरे सेवा चाकरी कौन करेगा, ठीक, साधु तो कोई पूंजी रखते नहीं और जंगल में रहते गांव में रहते नहीं, बीमारी में क्या होगा तेरा। उसने क्या कहा कि हिरण के बच्चे होते हैं तो बीमार होते हैं तो क्या होता है, पशु पक्षी बीमार होता है तो क्या होता है, बस अपेक्षा बुद्धि छूट गई, उसको कोई दुख होगा नहीं। दुख किसको होता है कि जिसको अपेक्षा है और मिले नहीं उसको दुख होता है, नहीं मिलने से दुख नहीं होता है, अपेक्षा है और नहीं मिले तो दुख होता है। तो आत्मार्थी को तो वैसी तैयारी होती है कि कोई भी हालत में हमको चलता है, इसके बिना और उसके बिना नहीं चले, ये हमारे जीवन में सिद्धांत में है ही नहीं, हमारा जीवन जीने के सिद्धांत में वो बात
नहीं है,
है ही नहीं। चलो तो उसके तब तैयारी है, कोई भी परिस्थिति में जैसी है वैसी उदय आया इसमें चला लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि मुमुक्षु वो है कि जिसको संपूर्ण मुक्त होना है,
है।
संपूर्ण मुक्त होना है तो जिसको संपूर्ण मुक्त होना है उसको कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए, इस पर से वो निकलता है कि जो सच्चा मुमुक्षु है, पात्रतावान है, सच्ची पात्रता है, वो तो वही देखता है कि मुझे किस किस पदार्थ का प्रतिबंध है, मुझे कौन से पदार्थ का मुझे प्रतिबंध है, मुझे उसको टालना है। कोई भी प्रतिबंध मुझे नहीं चाहिए तभी मेरा मोक्ष हो सकता है। और मोक्ष का प्रयत्न ऐसे ही होता है, प्रतिबंध रख करके मोक्ष का प्रयत्न होने वाला
नहीं है,
प्रतिबंध रख करके नहीं होता है, उसकी तैयारी तो अभिप्राय में आ जानी चाहिए। जब भी मोक्ष का लक्ष्य बंधता है, इसके पहले मोक्ष का पूर्णता का लक्ष्य बंधता नहीं है। बहुत अच्छा बात लिया है, आरंभ और परिग्रह किसी भी पदार्थ के प्रति जैसे जैसे मोह मिटता है, मोह मैंने अपनत्व का भाव जैसे जैसे मिटता है मंदता को प्राप्त होता है, जैसे जैसे उसके प्रति अपनापन का अभिमान मंद परिणाम को प्राप्त करता है, नहीं तीव्रता से अपनापन नहीं होता है, वैसे वैसे मुमुक्षुता वर्धमान हुआ करती है। ये लोग पूछते नहीं हमारी मुमुक्षुता का पात्रता का विकास कैसे हो, यही कारण से हो, प्रतिबंध छोड़ो बस, क्या
प्रतिबंध
को छोड़ो बात खत्म, मुमुक्षुता बढ़ेगी। बहुत अच्छा, चाबी दे दिया है मुमुक्षुता बढ़ाने के लिए, चाबी अच्छी चाबी दे दिया है। हम कैसे आगे बढ़े कि जहां जहां अपनत्व करता हो छोड़ो, कहां अपनत्व होता है देखो, तलाश करो क्या परिणाम अपनत्व करके जाता है, कहां कहां अपनत्व करके जाता है, क्यों गया अपनत्व, हुआ तो गया कि बिना अपनत्व गया, बस देख लो। अनंत काल का परिचय वाला यह अभिमान प्राय एकदम निवृत्त नहीं होता, एकदम मैंने एक झटके से नहीं मिट सकता, हो सकता है पहले पहले उसमें मंदता आवे फिर उसका अभाव होवे, तो दर्शन मुख यही प्रकार है, पहले मंदता आती है फिर मिटता है। मोह मैंने दर्शन मोह लेना, यहाँ अपनत्व दर्शन मोह से होता है, पर पदार्थ में अपनत्व दर्शन मोह से होता है, वो पहले मंद होता है क्योंकि अनंत काल से उसका परिचय है, दृढ़ किया है, तो पहले मंद होगा फिर मिटेगा। उसी कारण से इसीलिए तन मन धन आदि जो कहीं भी अपना रूप से वर्तता हो, जहां अपनापन लगता हो, ऐसा तन मन धन वो ज्ञानी के प्रति अर्पण करने में आता है। आपको जो आप कहेंगे वैसा करेंगे, हमारी कोई चीज नहीं है, शरीर भी आपकी सेवा में, मन भी आपकी आज्ञा में, और धन भी आप जैसा कहो वैसा हम करें, हमारा कोई अधिकार उस पे
नहीं
है। ऐसा अपनत्व मिटाने के लिए ये प्रयोग है, ये प्रयोग किस लिए है, अपनत्व मिटाने के लिए। जब अपनत्व मिटाएगा तो फिर प्रकृति भी छूट जाएगी, फिर प्रकृति दोष रहने वाला
नहीं है,
उसको नहीं रहेगा। क्या होता है, धर्म के क्षेत्र में तन मन धन का समर्पण होता है, लेकिन अपना तो रख करके, क्या मेरा था उसमें से मैंने इतना खर्च कर दिया, और हमने बहुत ज्यादा खर्च किया, लेकिन मेरा पना रख करके, ये समर्पण सच्चा समर्पण
नहीं है,
नहीं है। ऐसी बात है, समर्पण तो करते हैं लोग, लेकिन अपना तो रख करके समर्पण करते हैं, तो वो समर्पण सच्चा
नहीं है,
नहीं है। देखो हमने इतना दिया, उधर इतना दिया, उधर इतना दिया, किसका दिया? अपना था दिया कि अपना नहीं था वो दिया?
नहीं था,
वास्तव में अपना नहीं था। ऐसा करके अगर देने में आता है तो वो सच्चा है, ऐसी बात है।
पहले से टारगेट नक्की करें,
मतलब
मेरे को इस साल 50,000 देना है, 2,00,000 देना है, 10,00,000 देना है, ऐसा टारगेट
नहीं करें। तो उसमें किसका दिया वो सवाल है, जो दिया वो किसका दिया? हमारा था उसमें से
दिया,
तो कितना भी दे दे उसने अपनापन नहीं छोड़ा, अपनापन नहीं दिया, पैसा दिया लेकिन अपनापन नहीं दिया। पैसा तो उसलिए ज्ञानी दिलवाते हैं कि अपना अपनापन छोड़ने के लिए, और अपनापन रख करके देने की बात तो ज्ञानी के उपदेश में
नहीं है,
नहीं है। देने के लिए ऐसा वो बात भी सही
नहीं है।
वो ज्ञानी के प्रति अर्पण करने में आता है, प्राय ज्ञानी कुछ उसमें उसको ग्रहण करता
नहीं
है, ज्ञानी को कोई जरूरत नहीं है, किसी का धन की ज्ञानी को जरूरत
नहीं
है, इसलिए वो ग्रहण करेगा नहीं। परंतु उसमें से अपनापन मिटाने का उपदेश देते हैं, तो अपनापन मिटाओ, कहीं भी लगाओ तो अपनापन मिटा करके लगाओ, रखो तो भी अपनापन मत रखो, पर नहीं रखो तो भी अपनापन मत रखो, अपनापन छुड़ाना है, बंदे की बात तो वो है। और करने योग्य भी ऐसा ही है, यही करने योग्य है, अपनापन मिटाना वही करने योग्य है। देना नहीं देने में तो जो पर्याय होने वाली है होती है, लेकिन अपनापन है कि नहीं है उस पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य तो उस पर होना चाहिए। પોતાની કમાણી જ અપના પણ છે, બીજું શું છે? પોતાની કમાણી નો મતલબ શું? મારી કમાણી પોતાપણું આવી ગયો, પોતાપણું રાખીને જે કોઈ કઈ બી આપે, ભલે ને 10% નહીં 99% આપી દે, 100% આપી દે, ચાલો ઠીક, એનું એને અભિમાન થયા વિના નયા દુર્ગુણ પેદા હોગા। दान देने से तो सदगुण बढ़ना चाहिए, वो दान देने से अवगुण बढ़ा नहीं या पैदा हुआ, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा
नहीं हुआ,
नहीं हुआ। ये वितराग मार्ग अलौकिक मार्ग है, दूसरी जगह तो प्रशंसा करेगा, पैसा देने वाले का प्रशंसा करेगा, भाई बहुत देता है, बहुत देता है, मैं तो बोल रहा हूँ इधर खड़े रह जाओ, किस प्रकार से देते हो, प्रकार सच्चा है या प्रकार गलत है, बस वही देखना है। और करने योग्य भी ऐसा ही है कि आरंभ परिग्रह को बार बार प्रसंग से, बार बार के प्रसंग के, हर वक्त के प्रसंग से विचार विचार करके अपनापन होना बंद कर देना। हाँ, जहाँ भी आरंभ परिग्रह का जितना भी प्रसंग लगता हो वहाँ अपनापन बंद हो जाए ऐसा प्रयास करना है, यही प्रयत्न करना है। मेरा कुछ नहीं है, जिसका होगा उसका होगा, लेकिन मेरा तो नहीं है। तो मेरा नहीं है, परिवार का तो है।
नहीं, वो जा गया।
किसका परिवार?
किसका परिवार है?
परिवार भी अपना
नहीं है,
वो बात है। थोड़ा कठिन तो लगे लेकिन इसके बिना कोई निस्तार
नहीं है।
चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा नहीं लगे, जिसको मुक्त होना है छूटना है उसको प्रतिबंध मिटाना ही चाहिए। प्रतिबंध रख के कोई मुक्त हुआ है ऐसा तीन काल में बना
नहीं है।
हमको प्रतिबंध भी रखना है, व्यवहारिक कार्य में प्रीति रुचि रखना है और परमार्थ का लाभ भी हमें चाहिए, ऐसा तीन काल में कभी बनने वाला
नहीं है।
आरंभ और परिग्रह को बार बार के प्रसंग में विचार विचार करके अपना होने को मिटा देना, अटकावा, उसको रोकना, अपना होने में रोक लगाना, अपनत्व होने में रोक लगा देना, तभी मुमुक्षुता निर्मल होती है। ये मुमुक्षुता निर्मल होने का अनेक कारण में से एक कारण यह भी है। जैसे कोई पत्र में ऐसा आएगा, सत्पुरुष के प्रति अत्यंत भक्ति वो मुमुक्षुता निर्मल होने का कारण है। तो अत्यंत भक्ति में क्या होता है कि उसको समर्पण आता है। अत्यंत भक्ति होने से क्या होता है?
समर्पण
आता है, और समर्पण अच्छी तरह आता है कि मेरा नहीं है। इसमें तो अपनापन छोड़ने का तो सत्पुरुष का उपदेश है, तो हम अपनापन छोड़ करके समर्पण करते हैं तो उसकी मुमुक्षुता निर्मल होती है। क्या
निर्मल होती है? मुमुक्षुता,
मुमुक्षुता निर्मल होने से आत्मस्वरूप का दर्शन होगा। मलिन ज्ञान में आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता है, निर्मल ज्ञान में ही आत्मस्वरूप का दर्शन होता है। मुमुक्षुता निर्मल होने का ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। ओ, 332 में यथार्थ भूमिका कैसी होनी चाहिए, मुमुक्षुता कैसे वर्धमान हो, मुमुक्षुता में निर्मलता ज्ञान के कैसे बढ़े कि जिससे हमारा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, बस इसमें से ये बोध लेने का है। बहुत प्रैक्टिकल साइड का ये बात है।
श्री महाराज स्वामी भगवान।